तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाधे तं नयमाम चरणान्तिके। कल हमने भागवत महात्मा के संबंध में बतलाया था कुछ। नारद ऋषि हरिद्वार में सनक सनंदन अपने गुरु से मिले और उन्होंने उनको बतलाया समस्याएं हैं, सबकी समस्याएं, सब समय की समस्याएं गीता और श्रीमद् भागवत के श्रवण से दूर हो जाती है, इसलिए आप इसको श्रवण कराएं। और तब उन्होंने श्रवण का आरंभ कराया और जैसे ही महात्माओं को श्रवण कराया, आश्चर्य की बात हुई, कि वहां भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ में वहां पर आईं और उनके बच्चे भी, दोनों लड़के भी नौजवान हो गए, बड़ी सुखी हो गए और भक्ति देवी भी बड़ी प्रफुल्लित हो गई। तब उन्होंने कहना आरंभ किया कि देखो, प्राचीन काल में तुंग भद्रा नदी के किनारे, दक्षिण भारत में नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम था आत्माराम आत्मदेव, बड़े सदाचारी, अच्छे विचार वाले थे। उनकी पत्नी भी बड़े ऊंचे कुल से आई थी किंतु थोड़ी सी कर्कशा थी, कर्कशा समझते हैं, कठोर वाणी बोलने वाली, बात बात में पति से लड़ने झगड़ने वाली, किंतु बड़ी सुंदरी थी और ऊंचे घर से आई थी, बात बात में झगड़ पड़ती, बनती नहीं, और वो भोले भाले विप्र उसकी बात मान करके किसी प्रकार से संसार का जीवन निर्वाह करते, किंतु उनको पुत्र नहीं था। बहुत दिन हो गया, 50 वर्ष की उम्र हो गई, तो उन्हें सोचा जैसे पुत्र नहीं है तो जीवन बेकार का है, तो मेरे बेटे भी नहीं होंगे तो हमारा मरने के बाद में कौन संस्कार करेगा, उसको तो नरक में भी जगह नहीं मिलती है जिनको पुत्र नहीं है। बड़े चिंतित हुए और एक दिन कहीं पर प्राण त्याग करने के लिए चले, एक सरोवर में पहुंचे, बड़ी प्यास लगी थी, पहुंचे, पानी पिया और सोचा जी इसी सरोवर में डूब करके मरेंगे। इतने में वहां पर एक सन्यासी साधु को देखा, साधु ने पूछा, भाई तुम बड़े दुखी हो, बात क्या है? क्या कहूं, मैं इसलिए दुखी हूं कि हमको कोई पुत्र नहीं है, इसलिए आप सन्यासी हैं, साधु हैं, आप यदि कह दें जो तुमको पुत्र हो जाए तो हो जाएगा और हमारा जीवन सफल हो जाएगा, जिसको पुत्र नहीं है उसका लोक परलोक दोनों बिगड़ जाता है, मैं गाय को खरीद करके लाता हूं तो उसके बच्चे नहीं होते हैं, कोई वृक्ष लगाता हूं तो उसमें फल नहीं आते हैं, कोई चीज ले आता हूं तो जल्दी से सड़ गल जाते हैं, ऐसा मैं पापी हूं या क्या है, इसलिए कृपा करके आप मुझे एक पुत्र दे दीजिए तो मैं सुखी रहूंगा। सन्यासी ने कहा, जी देखो, भागवत गीता रामायण पढ़ो, देखो चित्रकेतु महाराज को 1000 से अधिक रानियां थी, उनको पुत्र नहीं था, उनके घर में अंगिरा ऋषि आए, उन्होंने कहा हमको एक पुत्र चाहिए। भैया तुमको 7 जन्म में पुत्र नहीं है, अतः तो हमको तो चाहिए, आप जैसे महात्मा मिल गए तो जरूर एक पुत्र दीजिए, मैं सुखी रहूंगा। कहा जब पुत्र के द्वारा कोई सुखी नहीं रहता, नहीं रहेगा तू, मैं जानता हूं, तो नहीं आप किसी प्रकार से पुत्र दे दे। उन्होंने अच्छा तो जाओ, तुम मानता नहीं है मेरी बात, तुमको हर्ष और शोकप्रद एक पुत्र होगा। उन्हें कोई बात नहीं, शोकप्रद होगा कोई बात ना, हर्ष तो होगा ही, यदि बुढ़ापे में हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम तो उसको घर बार सब भार दे करके मैं चला जाऊंगा वन में भजन करने के लिए, कोई बात नहीं है, तभी हमारी संतान तो चलेगी। पुत्र हुआ समय पर, बहुत ही सुंदर अलबेला पुत्र, दिन दिन चांद की तरह बढ़ने लग गया। जब 5 वर्ष का जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, थोड़ा बहुत ही चांद जैसा मुखड़ा, बड़ा ही सुंदर। उनकी हजारों जो पत्नियां थी उन्होंने सोचा जी अब तो ये राजा उसी स्त्री के पास में रहता है जिसका लड़का है, अब तो हमको नौकरानी की तरफ में भी नहीं पूछता, पहले तो साबुन कपड़े तेल इत्यादि दे देता, किसी बहाने से हम बातचीत कर लेती, अब तो ये कुछ पूछता ही नहीं है। ये सब हमारे दुखों का कारण ये लड़का है, इसलिए सबने मिलकर के उसको 20 दे दिया और लड़का मर गया। अब तो राजा रानी बड़े दुखी होकर के चित्रकेतु महाराज बड़े जोर से रोने लगे। नहीं दुख सुख हुआ, मर गया ना, उनको समझाने के लिए जम आए। और फिर वही नारद ऋषि अंगिरा उनके साथ में आए जिन्होंने पुत्र दिया था। मैंने कहा था जे पुत्र से सुख नहीं गा, समझा तुम भगवान का चिंतन करो, उन्हीं को अपना पुत्र बनाओ, उन्हीं को अपना स्वामी सखा सब बनाओ और तुम सुखी रहो। तो तुम लोग समझते नहीं, आज तक पुत्र से कौन सुखी हुआ, मोह मत करो। इसके बाद में हाय हाय करते हुए वो नारद जी के पास में बोले जब मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने उनको मंत्र देकर के, बहुत विस्तारित कथा है, हमने 2 मिनट में कह दी, समय आने पर इसको बतलाएंगे। तो उनको सुख नहीं हुआ, फिर तुमको पुत्र से कैसे सुख हो जाएगा। नहीं प्रभु आप हमको पुत्र दे दीजिए। तो ठीक है, तो नहीं मानता है तो जाओ ये एक फल ले जाओ, अपनी स्त्री को खिला देना, उसको पुत्र होगा, सावधान रहना। दे दिया, वो घर में आया, अपनी पत्नी को बोला जिसे आज तो हमारा परम सौभाग्य है, एक महात्मा जी मिल गए, उन्होंने ये फल दिया है, फल खाने से बहुत ही अच्छा सचरित्र विद्वान सुशील पुत्र होगा, उसको दे दिया, तुम खा लेना। उसने सोचा जब वो फल दे दिया तो उसने ले लिया, सोचा भाई बड़ी मुश्किल की बात है, अभी तक मैं स्वतंत्र हूं, यदि इस फल को खा लिया और सचमुच में बड़ा गर्भ हो गया तो फिर बड़ा चलना फिरना तो मुश्किल, और डकैत घर में यदि आ जाए तो भागूंगी कैसे, बड़ी समस्या की बात, और लेकर के चलना फिरना इधर उधर जाना घर गृहस्थी को संभालना ये मेरे लिए संभव की बात नहीं है, इसलिए मैं नहीं खाती। उसने अपनी बहन को बुलाया और उससे पूछा जे क्या करना चाहिए। उसने कहा जे तुम ठीक कहती हो, ठीक कहती है, ऐसा करो हमको बच्चा होने वाला है, 8 महीना भी लगेगा, तुमसे कह देना जी मैंने खा लिया और खाना मत फेंक देना, किसी गाय को खिला देना, और जब हमको बच्चा होगा तो वो बच्चा तुमको मैं दे दूंगी, तुम कहना जी हमको बच्चा हुआ है, और दूध पिलाने के लिए कहना कि मेरी स्त्री को तो मैंने हमको तो दूध उतरता नहीं, हमारी बहन को बुला दो वो दूध पिलाएगी, उसको कुछ पैसे दे दिए जाए, बस काम बन जाएगा। बस ऐसा ही किया, उसने गाय को वो फल खिला दिया, उसको भी गर्भ रहा, और इधर उसको तो गर्भ था ही, उसकी बहन को ठीक समय पर 9 महीने के बाद में गैया ने एक बड़ा सुंदर बच्चा, किंतु कान उसका गाय के समान और बाकी सब शरीर इत्यादि सब, और बड़ा ही सुशील और बहुत तीव्र बुद्धि का और बहुत धीर स्थिर लड़का हुआ। और उसको कैसा लड़का हुआ, उसको लड़का हुआ बदमाश, संस्कार तो था नहीं, बहुत ही बदमाश, जन्म लेने से ही इसके बाद में वो दे गई इसको धुंधली को, उसकी बहन, और इसने कह दिया जैसे हमको बच्चा हो गया। पति ने भी मान लिया किंतु दूध तो है नहीं, बच्चा तो हुआ नहीं। उसने कहा जैसे हमारी बहन को बुला दो, उसका बच्चा हुआ था वो मर गया है, तो आकर के दूध पिलाया जाएगी, उसको कुछ पैसे दे देना। अच्छी बात है, ठीक है, पति भोले भाले सरल सीधे मान लिए। अब इसके बाद में दोनों लड़के बढ़ने लगे। अब कुछ दिनों के बाद में महोत्पाती हुआ वो धुंधली का लड़का, बहुत, और ये लड़का बड़ा सुशील, वेद इत्यादि अध्ययन, श्रीमद भागवत गीता अध्ययन करने लगा और वैसे ही उसमें गुण आने लगे। और वो धुंधकारी बदमाश, उसका संस्कार इतना खराब कि डकैत चोर होने लग गया। धीरे धीरे 8-9 वर्ष की उम्र में ही चोरी डकैती ये सब करने लगा। दोस्त कुछ बदमाश लड़कों के साथ में मिल करके दूसरों को, लड़कों को पानी में फेंक देता, उन्हें मार डालता, कुछ तंग करता, ऐसा हो, इसलिए उसका नाम धुंधकारी रखा गया। कुछ दिनों के बाद में जब ये कुछ और बड़े हुए तो ये अपने पिता और माता को मारने लग गया और बोला, अरे तुम्हारे पास में जो धन है वो दे दो, उन्हें तो अभी तुम्हें मारूंगा। ऐसे जो कुछ उसके पास में थे सब ले लिए, और फिर भी उनको तंग करता, जो कुछ था वो सब कुछ ले लिया, और अंत में ऐसा तंग किया कि उसके पिताजी बोले, जब मैं क्या करूं। गोकर्ण ने कहा जी अब चला जाना ही अच्छा है घर से, इसका सुधारना बड़ा कठिन है, मैं भी तीर्थ में जा रहा हूं, और आप कहीं वन में जाकर के भगवान का भजन कीजिए, इसी से सुखी होंगे। पहले आपको बतलाया था नरेश ने आकर के, आपको आपने सुना नहीं, ठीक है। वो तो चले गए और इधर में भगवान का भजन करने लगे, और उसकी मैया को मार पीट कर तंग कर, ऐसा तंग किया कि वो कुएं में डूब करके मर गई। अब वो स्वतंत्र हो गया, भाई भी तीर्थ में चले गए, कोई संभालने वाला नहीं, अब वेश्याओं के साथ में रहने लग गया, बुरे कर्म करने लगा, डकैती करने लग गया, और अंत में ऐसी दशा हुई, एक दिन बहुत सा माल चोरी करके ले आया, सोने जवाहरात इत्यादि कहीं से, और जो वेश्याएं उसके पास में थी 8-10, उन लोगों का अच्छा मौका है, ये तो दूसरों को ही देगा, खर्च कर देगा, इसलिए इसको मार करके आज यहीं पर गाड़ देना है। बस लकड़ी जलाकर और लकड़ी जलती हुई लकड़ी के अंगार से उन्हें पीट करके मारा, और मार करके घर में गड्ढा खोद करके गाड़ दिया, और रुपये पैसे लेकर के चली गई। अब ये मरने पर बड़ा पिशाच हुआ, अंत में जिसकी मृत्यु होती है जैसे, ऐसे ही पिशाच होता है। भरत जी का नाम सुना था होगा आप लोगों ने, मरते समय में उन्होंने एक हिरण की चिंता की तो वो हिरण बन करके आए। जो भगवत चिंतन करेगा, भगवान के भक्तों की चिंतन करेगा, वो वैसा ही जन्म पा करके भगवान को प्राप्त होगा, सुखी होगा। तो इसलिए ये महापिशाच हुआ, भोजन देख रहा है खा नहीं सकता, पानी देख रहा है पी नहीं सकता, सब समय जलता जलता कहता रहता है, और गांव में बड़ा उत्पात करने लग गया। कुछ दिनों के बाद में उसके भैया तीर्थ यात्रा से लौटे, वहां आकर के उसी अपने घर में ठहरे, रात में कवाड़े बजने लगी, पत्थर बरसने लग गए, गाली गलौज बक रहा, कहिए ये कौन है। वो अपना मंत्र उच्चारण करते ही वो शांत हो गया। उन्होंने कहा तुम कौन है। मैं तुम्हारा वही भैया धुंधकारी हूं, मुझे वेश्याओं ने ऐसे मारा, हमारी बड़ी दुर्गति हुई, मैं पिशाच होकर के आऊं, हमारा जल्दी इसमें से उद्धार करो। उन्होंने कहा जे भाई हमने तो गया में, पुष्कर में और हरिद्वार में, उधर काशी कांची में, कन्याकुमारी में, बहुत सी तुम्हारे लिए, हमारे पूर्वजों के लिए और तुम्हारे लिए भी मैंने श्राद्ध किया है, मैं जान गया था जे तुम मर गया है और ऐसे मरा, इसलिए हमने श्राद्ध किया, तो तुम्हारा कुछ भी इसे बना नहीं। अच्छा तो ठीक है, मैं इसके लिए चिंता करता हूँ, चिंता मत करो, मैं 2-1 दिन के अंदर में उपाय सोच करके तुम्हें बतलाऊंगा। ऐसा सोच करके वो सूर्य का ध्यान किया, सूर्य ने आकाशवाणी के माध्यम से बतलाया 7 दिनों तक भागवत कह करके से सुनाओ, और ये ध्यान से सुने तभी इसका उद्धार होगा और नहीं होगा। अच्छा ठीक है, उन्होंने ढिढोरा पिटवा दिया, घोषणा की दी कि हम यहाँ पर भागवत का हम कथा हम सुनाएंगे, खुद विद्वान थे ही। संकल्प किया, चारों तरफ से मनुष्य सब आने लगे, ऋषि महात्मा भी वहां पर उपस्थित, हजारों आदमियों की भीड़ हो गई। उन्होंने कथा आरंभ की, जो आरंभ की पहला दिन समाप्त हुआ वो प्रेत के रूप में उसका आवाहन किया धुंधगारी ने, और वो आकर के उस किसी चीज में रहेगा। आत्मा कैसी होती है, हवा से भी बड़ी सूक्ष्म होती है। एक केस को 100 भाग में विभाग करो और फिर उसके एक भाग को फिर 100 से भाग कर दो, उसे भी सूक्ष्म में ये जीवात्मा होती है। और प्रत्येक व्यक्तियों के अंदर में एक एक जीवात्मा है, अभी वैसा भी कुछ कर रहा है, और सबके पास ही में उसके सखा परमात्मा है जो उसको देखते हैं और उसके कर्मों को देख करके उसी के अनुसार में उसको फल भी देते हैं। किंतु वो पास में रहने पर भी परमात्मा को देख नहीं पाता। हम लोगों के अंदर में, सभी के अंदर में जीवात्मा और परमात्मा दो है, केवल परमात्मा है या जीवात्मा नहीं है ऐसा नहीं। वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में यह सर्वत्र बतला गया है, दौ सखाय सुपर्णाशायुजा इत्यादि बतलाया गया। हमारे शरीर में एक आत्मा है और एक परमात्मा। परमात्मा हमारे कर्म फलों का नियंता है और साक्षी है, और जीवात्मा कर्म फल करता, कर्म का फल चलता है। फिर क्या बतला रहा था, हाँ, धुंधकारी आ करके और एक बांस रखा था सूखा, 7 गांठों वाला, उसी के छेद में प्रवेश कर गया और बड़े ध्यान से सुनने लगा। पहले दिन ही जब कथा समाप्त हुई, उसका एक गांठ बड़े जोर से फटी, दूसरे दिन दूसरी फटी, तीसरे दिन तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 7 दिन में 7 गांठें फट गई। भागवत की कथा जैसा हम लोग आरंभ कर रहे हैं, नारद उपाख्यान, नारद जी और व्यास जी का मिलन, कैसे व्यास जी ने भागवत को जगत में प्रकाश किया, फिर अश्वत्थामा और पांडवों और कौरवों का युद्ध के संबंध में कुछ, इसके बाद में धीरे 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 ध्रुव जी का चरित्र, अजामिल जी का उपाख्यान, कैसे भगवान के नाम के द्वारा उनका उद्धार हुआ, कैसे कपिल और देवहूति का संवाद हुआ, कपिल जी ने अपनी मैया को भागवत का तत्व बतलाया, इसके बाद में फिर प्रहलाद महाराज जी का चरित्र, इसके बाद में और सब चरित्र, चित्रकेतु महाराज जी का चरित्र, अंत में कृष्ण का जन्म, एक मथुरा में जन्म और दूसरा गोकुल में जन्म, और किस प्रकार से उन्होंने बाल्य लीलाएं की, पूतना, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर इत्यादि राक्षसों का संहार किया, फिर अंत में उन्होंने रासलीला इत्यादि ब्रज में की, फिर कंस का उद्धार किया, इसके बाद में मथुरा आ गए और मथुरा से आकर के फिर वो गुरुकुल में कैसे गए बलदेव जी के साथ में, 60 कलाओं को उन्होंने शिक्षा की, फिर वहां से लौट करके आए और फिर द्वारका को चले गए, क्यों द्वारका का चले गए ये सब उसमें है। द्वारका के जाने के बाद में उनकी शादियां हुई, रुक्मणी, सत्यभामा, नग्न जित्या और सबसे, और अंत में 16,000 स्त्रियों के साथ में नरकासुर के जगह में वहां पर उनकी शादियां हुई, इसके बाद में उनके पुत्र कैसे हुए, अंत में महाभारत युद्ध हुआ। महाभारत युद्ध में ये किस प्रकार से अर्जुन के सारथी बने और किस प्रकार से घोर महाभारत का युद्ध हुआ, और महाभारत के युद्ध में इन्होंने रथ संचालन किया, उनके मन के सारथी बने, और किस प्रकार से धर्म की प्रतिष्ठा की, और अंत में द्वारका में अपनी लीलाओं का संगोपन कर दिया। ये सब चरित्र आरंभ से उन्होंने सुनाया, हम क्रमशः इसका हम बतलाएंगे। अभी हम कुछ शंकाओं का समाधान भी करने जा रहे हैं। पहली बात ये शंका होती है, महाभारत के युद्ध में भारतवर्ष आधुनिक इतिहासकारों का और आधुनिक दिमाग वाले लोगों का कहना है कि भारतवर्ष उसे रसातल में चला गया। उस युद्ध में भीष्म, कर्ण, द्रोण इत्यादि बड़े बड़े लोग, अभिमन्यु इत्यादि दोनों तरफों के कितने 18 छौणी माने कितने लाख, 40 लाख के करीब दोनों ओर की सेनाओं में पुरुष लोग सब मरे गए। केवल कृष्णा और 5 पांडव और उधर में 3 आदमी केवल बचे थे। तो ये 8 आदमी बचे, बाकी सब 40 लाख लोग जितने पुरुष थे मारे गए। जब मारे गए तो स्त्रियां विधवा हो गईं, बच्चे अनाथ हो गए। इन वीरों के मरने से हमारे यहाँ का धनुर्वेद और जो विद्याएं थी वो भी धीरे धीरे लुप्त हो गईं। तो भारतवर्ष की उन्नति, धर्म की स्थापना कहाँ हुई? किंतु गीता में तो लिखा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम् परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भव। युग युग में आता हूँ, धर्म की प्रतिष्ठा करता हूँ, इस समय भी कृष्ण के रूप में आया हूँ, असुरों का दमन कर और साधु संतों की रक्षा कर मैं धर्म की संस्थापना करूंगा। कृष्ण की प्रतिज्ञा तो असफल हो नहीं सकती, जरूर हुई पूरी धर्म की स्थापना की, किंतु आज करके ऐतिहासिकों का, दूसरों लोगों का ये विचार है या हम लोगों का सबका, भारत युद्ध में भारत का विनाश हुआ, इतने लाखों लोगों का मरना, स्त्रियों का विधवा होना, ये सब क्या है? विद्याएं लुप्त हो गईं और तब से बाद में हम लोग मुसलमानों के गुलाम हुए, इसके बाद में भारतवासी लोग ये औरंगजेब इत्यादि के इसमें आए, इसके बाद में पुनः अंग्रेजों के अधिकार में आए और अब तक हम लोग एक तरह से दासी हैं, अब स्वतंत्र हुए हैं इतने दिनों के बाद। इसका समाधान क्या है? कृष्ण ने धर्म की प्रतिष्ठा कैसे की? इसलिए आप लोग इसमें शंका नहीं करेंगे कृष्ण ने धर्म की प्रतिष्ठा की कैसे। देखो इस चीज को खूब गंभीरता से समझेंगे और इसके बाद में हम ये भी बतलाएंगे कि स्त्रियों को गायत्री क्यों नहीं दी जाती, ना स्त्रियों को गायत्री का मंत्र क्यों नहीं जाता, ये सरासर अन्याय है ना। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ये शास्त्रों में ऐसा क्यों कहा गया? ये स्त्रियां ढोल गंवार शूद्र पशुनारी को ये मारने से सीधे होते हैं, ये क्यों कहा गया? अनुसुईया जी ने सीता जी को क्यों कहा पति लंगड़ा लूला कोढ़ी का भी हो, दुर्वचन बोलने वाला भी हो, तो भी पति की सेवा करनी चाहिए स्त्रियों के लिए, ये उनका धर्म है ने? ये भी तो अन्याय ही है। यदि पति बदमाश टाइप का है तो भी स्त्रियां उनको भी पति की सेवा करेंगी, ये तो उन्होंने गड़बड़ कहा। फिर राम ने सीता जी का त्याग क्यों किया? क्या उन्होंने अन्याय किया था? ये भी तीसरी के साथ में अन्याय है। शंकर जी ने सती का क्यों त्याग किया? ये भी तो अन्याय है ना, क्यों त्याग किया? इसलिए हम देखते हैं कि ऊपर से नीचे तक क्या है, सब सरासर पुरुष लोगों का ये अन्याय है स्त्रियों पर, और शास्त्रकारों ने, ये पुरुष लोगों ने शास्त्र बनाए और उनको इन सबसे वंचित करके और स्त्रियों को सदा जकड़ करके रखा जो वो ऊपर न उठ सके, ये तो सरासर अन्याय है, ये शास्त्र में ऐसा कहा गया क्यों? और भी कुछ प्रश्न है, अभी याद नहीं आ रहा, मुझे याद था और कोई बहुत गूढ़ प्रश्न ऐसे ही याद है। खैर मैं इस सब का समाधान करूंगा, इसलिए भागवत आरंभ करने से पहले इनका भी समाधान होना, आप लोग स्वयं ही विचार करके देखें, नहीं तो तुलसीदास ने अन्याय नहीं किया, ये शास्त्र पुरुषों के भी नहीं बनाए हुए हैं, स्त्रियों का समाज में सब समय आदर रहा है, जिस समाज में स्त्रियों का आदर नहीं है माता के रूप में, बहन के रूप में, कन्या के रूप में, वो समाज एकदम मरा हुआ समाज है। तुलसीदास जी ने ऐसा कभी नहीं किया, शास्त्रों में ऐसा नहीं कहीं कहा गया, अनुसुईया जी ने ऐसा भी कभी नहीं कहा, राम ने भी ऐसा अन्याय नहीं किया, ये सब हम समय के अनुसार में इसे बतलाएं। अभी थोड़ा सा आप लोग हमारे माधव महाराज जी के मुख से अभी थोड़ा सा श्रीमद् भागवत में जो हम आरंभ करने जाते हैं नारद जी का चरित्र सुनाएंगे। शास्त्रों में ऐसा ही कहा गया है, बिन गुरु भवन निधि तरे न कोई, ज्यों बिरंग शंकर सम होई। यदि भगवान शंकर के समान और ब्रह्मा के समान ज्ञानी भी हो तो अभी बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा। अपने मन से हम जो विचार करते हैं उसे भर सागर को पार नहीं कर सकते, बुढ़ापा को दूर नहीं कर सकते, जन्म मरण का क्लेश ये दूर नहीं होगा। कैसे होगा? ये भगवत तत्व ज्ञान गुरु से ही होता है। नारद जी जैसे व्यक्ति किस प्रकार से अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया, और फिर व्यास जी जैसे नारायण के अवतार व्यास जी, उन्होंने किस प्रकार से नारद जी से मंत्र इत्यादि ग्रहण करके उसका पालन करके विश्व के कल्याण के लिए ये श्रीमद् भागवत की रचना की। इसके संबंध में संक्षिप्त में श्रीपाद माधव महाराज जी आपको बताएं। बोलिए।
बहुत अच्छा।
जिस समय गोकर्ण जी ने कथा समाप्त की उस समय आकाश में एक विमान आया और धुंधकारी को लेकर वो चला गया। जब जा रहा था तो गोकर्ण जी ने पूछा, अरे पार्षदों, भगवान के पार्षदों, यहां पर तो हजारों आदमियों ने, 88,000 मनुष्यों ने, ऋषियों ने, गृहस्थ भक्तों ने, सबने भगवान भागवत की कथा सुनी और मैंने सुनाया तो हमारे लिए कोई विमान नहीं आया, और इतने लोगों ने सुना सबके लेने आए, एक ही क्यों विमान आया, ये पक्षपात क्यों? उन्होंने कहा, धुंधकारी ने जिस रूप से सुना, निराहार रहकर कुछ भी नहीं खाया और बड़े मन से बड़े ध्यान से सुना और सुन करके कथाओं का मनन करता था। मनन मैंने क्या, चिंतन करके उसको मन ही मन में ग्रहण कर लेता था, इसलिए उस श्रद्धा के कारण, मनन के कारण वो भगवान को प्राप्त हो गया। और लोगों ने इस प्रकार से नियम से नहीं सुना, सुनने के लिए सुना, सुना विचार नहीं किया, श्रद्धा के साथ में पालन करने के लिए नहीं सुना, कल्याण के लिए नहीं सुना। और आपने जो भागवत की कथा की वो धुंधकारी के लिए किया, किंतु आपने भी मनन के साथ में नहीं किया, इसलिए ऐसा। इसलिए श्रोता के विचारों के अनुसार में फल होता है। भागवत सबके लिए कल्याणकारी है, यह बात तो ठीक है, किंतु उस रूप से धुंधकारी की भांति, परीक्षित महाराज जी की भांति, नारद की भांति, भक्ति की भांति यदि कोई मन से सुने पालन करने के लिए तो भाई उसका प्रेम फल होगा, और नहीं तो धन धान्य ये साधारण चीजें होंगी, मोह में और बांध देगी और संसार में जीवन मरण के चक्कर में हम पड़े रहेंगे, इसलिए सुनना चाहिए वैसा। उन्होंने फिर भागवत की कथा सुनाई और इस बार जरा मन से सुनाया, और उन्होंने मन के साथ में संपूर्ण रूप से लग्न के साथ में आदर के साथ में वस्तु को पाने के लिए श्रवण किया, और इस बार लाखों विमान आए और जितने थे वो सब वैकुंठ की गति को प्राप्त हो गए। कथा भी ऐसे सुननी चाहिए पालन करने के लिए श्रद्धा के अनुसार में, नहीं तो श्रोताओं के मन के भेद से उसके फल में भी अनिवार्य। एक ही क्लास में 100 लड़के पढ़ते हैं, कोई फर्स्ट होता है, कोई सेकंड होता है, कोई थर्ड होता है, कोई फेल भी होते हैं। क्यों? कि मास्टर ने ऐसा पक्षपात क्यों किया, उनकी कॉपियों के जांचने में गड़बड़ी हुई? नहीं, अपनी निष्ठा के ऊपर में निर्भर है, जो जितने मन से पढ़ेगा वो पास होगा या उच्च कोटि में जाएगा, उसी प्रकार से भागवत में भी। इसलिए खूब मन से सुनेंगे। पहली बात, हम आ रहे हैं थोड़ा सा शंकाओं का निवारण करेंगे, ये भी जरूरी है, ये भी भागवत का ही अंग है, नहीं तो बहुत से पाठक लोग आते हैं इन शंकाओं का निवारण नहीं कर पाते। इसके अतिरिक्त भी आपको कोई शंका होगी तो हम इस भागवत के माध्यम से ही हम उसको सुलझाने की चेष्टा करें। मैं ये नहीं कहता कि मैं सर्वज्ञ हूँ और सब कुछ जानता हूँ, तभी मैं जहाँ तक समझता हूँ गुरु वैष्णव की सेवा की है, उनकी मुख से सुना है, शास्त्रों का अध्ययन किया है, तो मैं समझता हूँ कि जरूर आप लोग संतुष्ट होंगे। पहली बात, शास्त्रों ने स्त्रियों के लिए इस प्रकार से एक पक्ष लेकर के पुरुषों का गायत्री मंत्र को स्त्रियों के लिए क्यों नहीं कहा? सब समय ही प्रारंभिक रूप से ये उसके लिए कुछ मना किया गया है गुरु परंपरा की दृष्टि से। क्यों भाई? कुछ शरीर की बनावट होती है, स्त्रियों को रजस्वला होता है धर्म, पुरुषों को नहीं होता है। उस समय जिस समय रजस्व वाला होता है, मासिक धर्म उनको होता है, उनके लिए रसोई बनाना, घर का काम करना, किसी को छूना, ये सब मना है। क्यों? तो स्त्रियां अशुद्ध हैं सब समय, तो स्त्रियां कुछ सब समय के लिए अशुद्ध हो गई? नहीं, ये शास्त्रकारों का विचार है, उनके कल्याण के लिए, पुरुषों का स्त्रियां दोनों को कल्याण के लिए। इसलिए रजस्वला में स्त्रियों को जरा लोगों को छूना, रसोई इत्यादि का कार्य, भगवान की को भोग इत्यादि देना, ये सब नहीं करना चाहिए। तो अभी जिन स्त्रियों को छोटे छोटे बच्चे हैं तो क्या करेंगी? दूध नहीं पिलाएंगी, वो तो बाध्य होकर के जो कुछ करना है तो करना पड़ेगा, किंतु वो मासिक धर्म स्त्रियों को होता है। इसलिए अपवित्रता के कारण ये ब्रह्म गायत्री नहीं करें, किंतु ब्रह्म गायत्री से ऊंचे जो मंत्र हैं, गोपाल मंत्र है, काम गायत्री है, और दूसरे मंत्र हैं दिए जाते हैं। ये ब्रह्म गायत्री से भी बहुत ऊंचा गोपाल जी का मंत्र है और सब मंत्र हैं, तभी स्त्रियों को ये इसलिए नहीं जाए। दूसरी बात, स्त्रियों में प्रेम धर्म होता है अधिक, बड़ी भावुक होती है, इसलिए भजन के लिए, आत्म कल्याण के लिए स्त्रियों जैसा भाव सेवा का भाव होना चाहिए। इसलिए दंडकारण्य के साथ हजार ऋषि लोग गोपियों के भाव से भगवान का भजन करने के लिए उपासना कर रही थी। किस लिए? एक छोटा सा बच्चा है, बेटा, मैया से कहे, मैया जरा पानी देना, तो अपनी बहन से कहेगा, छोटी हो या बन, बन जरा प्यास लगे, जरा पानी लगे, तो सबसे वो इसी तरह से बोलेगा, मैया से भी कहेगा, दूसरों से भी कहेगा। और बेटी होगी तो क्या करेगी? प्रेम का धर्म, सेवा की भावना उसमें प्रारंभ से होती है। भगवत भजन के लिए ये बहुत ही अनुकूल है। इसलिए बड़े बड़े ऋषि लोग, नारद भी गोपी बने, शंकर जी भी गोपीश्वर महादेव बने, और गोपी रूप से कृष्ण की सेवा की, नहीं तो उनको कंट्रोल करना सहज नहीं है, उनको प्राप्त होना सहज नहीं है। पुरुष का अभिमान, पुरुष का अभिमान जो मैं भोगता हूं, ये सब समय साधारण साधकों के लिए भी परित्याज्य है, उनको छोड़ देना चाहिए। पुरुष में अभिमान होता है, यह अभिमान दूर करना ही भजन का प्राथमिक कार्य है। इसलिए पक्षपात के लिए ऐसा नहीं किया गया कि स्त्रियां सेवा करेंगी, उनका धर्म ही है। हम लोग भी स्वरूप से स्त्री हैं, क्यों क्यों स्त्री हैं? भगवान की शक्ति से हम लोग निकले हैं, जोग माया के प्रभाव से वो भी स्त्री हैं, इसलिए हम लोग भी स्वरूपतः स्त्री जाति के हैं, शक्ति से निकलने के कारण पुरुष नहीं है। केवल मात्र एक पुरुष कौन है? कृष्ण है या राम या उनकी जो शक्ति, वो भी बिना शक्ति के काम नहीं कर सकते। गोवर्धन को किसने धारण किया? किसने? कृष्ण ने, गलत बात, उनकी शक्ति ने धारण किया, ने? उनके बाएं तरफ में, कृष्ण के बाएं तरफ में उनकी शक्ति है, उस शक्ति ने गोवर्धन को धारण किया, इसलिए ये सबसे बाया। यदि कृष्ण में शक्ति नहीं हो, दृष्टि शक्ति नहीं हो, कोई शक्ति नहीं हो, बुद्धि न, बुद्धि स्त्रीलिंग है ना, ये भी शक्ति का कार्य है, विचार शक्ति, ये भी शक्ति है। कृष्ण में केवल इच्छा शक्ति है और बाकी सब शक्ति करती है, इसलिए शक्ति के साथ में ये सब पक्षपात नहीं है। मूर्ख लोग नहीं समझते हैं, वो ऐसा कहते हैं। हमारे शास्त्रों में स्त्रियों को बड़ा आदर दिया गया है, आप लोग जानते हैं, रामचंद्र जी जो तुलसी जी ने लिखा मानस चरित्र, उसमें लिखा ढोल गमार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इसका कुछ तात्पर्य है, मूर्ख लोग नहीं समझ पाते, न उत्तर दे सकते हैं। रामचंद्र जी ने, तुलसीदास जी ने ये भी कहा, मंदोदरी, द्रौपदी, कुंती, अहिल्या, मंदोदरी, तारा, ये पांच कन्याएं हैं। कुंती को पांच पति, पांच नहीं छह पति, उसका पति पांडु जी और छह पति और, पांच पति और, जानते हैं आप लोग। द्रौपदी को भी पांच पति और तारा जी को दो, एक बाली और दूसरी सुग्रीव के साथ में पीछे से निकाह हुआ, और मंदोदरी रावण के साथ में, और फिर अंत में विभीषण के साथ में रही। तो ये कहां, ये पतिव्रता कहां रही? पतिव्रता कहते हैं किसको, इसको समझना चाहिए, इसको समझो। द्रौपदी जी सब समय कृष्ण को सखा मानती थी, उनके पति लोग कृष्ण की सेवा करते थे इसलिए उनके प्रति आदर था। उनके पति एक ही थे, कौन? कृष्ण ही हैं। इस चीज को समझो, जीवात्मा के पति हैं भगवान। कैसे? जो पति कहे जाते हैं उसका अर्थ होता है प पालन करना, त त्राण करना, जो हमारा पालन कर सके, पोषण कर सके और त्राण कर सके। अच्छा, जब तक शादी नहीं हुई थी आपके पति आपका परम पोषण भरण पोषण करते थे, और यदि मर जाएंगे तो पति कहां हुए? असल में पति कौन है? कृष्ण ही पति हैं, भगवान ही पति हैं। इस चीज को समझिए। लौकिक व्यवहार रूप में कुछ दिनों के लिए ये मान लिया गया ये पति हैं। और पति यदि हैं तो 10 बार उसने डाइवोर्स करके 10 बार पति बदला, अब कहां पतित्व रहा? उस स्त्री का ही पतित्व कहां है? पुरुषों का पतित्व कहां है? इसलिए ये सब विचार यहां ने, वहां पर आत्म विचार के लिए ये सब चीजें हैं ना? एकमात्र कृष्ण ही पति है, पुरुषों के लिए व्यवहारिक है, उनके प्रति भी आदर होना चाहिए ना? इसलिए कहा गया है मंदोदरी, द्रौपदी, मंदोदरी बहुत ही भक्त थी, रावण को बहुत समझाया था, आप लोगों को पता होगा, बहुत समझाया। कुंती जी को देखो कैसे परम भक्त हैं, अहल्या जी को देखो भगवान के परम भक्त हैं, यद्यपि गौतम ऋषि ने उनको अभिशाप दे दिया, पत्थर बन गई, किंतु परम भक्त है। पीछे से अपने पैरों की धूली से उनको स्पर्श किया, बड़ी सुंदरी नारी और बड़ी सर्वगुणों से युक्त हुई, भगवान की परम भक्त। ये सब पंच कन्या कहलाते हैं, इनका स्मरण करने से पतिव्रती स्त्रियां भी हैं वो उतर जाती हैं। तो स्त्रियों के प्रति पक्षपात कहां हुआ? शास्त्रों में जो वहां कहा गया, ढोल गमार शूद्र पशुनारी, इसको भी अच्छी तरह से समझिए। तुलसीदास जी बहुत ही विद्वान, परम भक्त, सबका कल्याण करने वाले थे। देखिए ढोल, ढोल ताड़न के अधिकारी, ढोल को पीटा जाता है उसे मधुर शब्द आएगा कि बहुत सुंदर ढंग से बजाने से उसमें मधुर कोमल शब्द निकलता है। यहां पर ताड़न नहीं कहा गया ना? ताड़न का शब्द बुरा अर्थ ले लेते हैं। एक आदमी ऐसे ढोल बजा रहा है लकड़ी से यहां से, तो उसमें अच्छे शब्द निकलेंगे स्वर, और मात्राओं के साथ में सीख करके बड़े धीरे से ताल स्वर से युक्त निकालेगा, तो तरह तरह के उसमें मधुर बोलियां निकलती हैं। इसलिए पीटने का अर्थ मारना ही नहीं है, ये मूर्खता बस ऐसा लोग करते हैं। तब हां ये कहा, ढोल को बजाना, गंवार, गंवार कौन? गंवारिन नहीं लिखा, गंवार लिखा। तो ये गंवार शब्द किसके लिए हुआ? पुरुषों के लिए। जो पुरुष गंवार हैं वो सब पुरुष नहीं, और जो नारी गंवार है उसके लिए लिखा। यदि होता तो रामचंद्र जी और भरत जी कैकई को क्यों नहीं मारा, पीटा? उनको कैसा सम्मान दिया? देखो तो कैकई को क्या गंवार कहेंगे? नहीं तो रामचंद्र जी ने कितना उनको आदर दिया, यह समझो। ये रामचंद्र जी की कथा में जो तुलसीदास जी ने लिखी है, इनकी विशेषता समझो, ये पक्षपात नहीं है। पक्षपात होता तो फिर उन लोगों को ऐसा क्यों कहा, द्रौपदी, अहल्या, कुंती, तारा, मंदोदरी इत्यादि को? और यदि ऐसे ही पक्षपात की बात होती तो कैकेयी ने राम को वनवास दिलाया था तो पहले तो उसको वो दंड देते दिया, माता कौशल्या से भी अधिक उनको सम्मान दिया है। इसलिए ऐसा मत समझो, गंवार जो नारी है, जैसे उनके पास में वन में रावण की बहन शूर्पणखा है। कैसी? उसका पति है, और पति को छोड़कर के दूसरे पति पर मुग्ध हो जाना ये गंवारता है ना, अच्छी बात है। तो ऐसे ही पशु तुल्य जो नारियां हैं, स्त्री गंवार नारियां हैं, ऐसे लोगों की ये तान के अधिकारी हैं, इसलिए उनका नाक कान काट लिया। और किसी का काटा? इस विचार को क्यों नहीं समझते साधारण लोग? पक्षपात कहां रहा? शूद्र, शूद्र माने क्या? शूद्र शब्द को समझिए, जो शोक करते हैं इस शरीर के लिए वो शूद्र है। सभी शूद्र नहीं है, शूद्र कौन है? जो शोक करते हैं क्या ये शरीर के लिए, शरीर हम नहीं है, इसके लिए मारामारी करते हैं, आसक्त रहते हैं, साथ साथ मोह में रहते हैं, ये सब शूद्र हैं, तत्व ज्ञान नहीं जानते। दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, ये सब शूद्र हैं, जो कि शरीर के लिए सुख के लिए दिन भर परिश्रम करते हैं, इसलिए ये शूद्रों में गणना है। रामचंद्र जी के समय में देखिए हनुमान जी को क्या कहा जाएगा, कौन जाति के हैं? सुग्रीव, बानर, भालू, ये कौन से जाति हैं? शूद्र हैं या शूद्र से भी नीचे गए हैं? इनको कितना सम्मान दिया गया। नारद जी कौन से जाति के हैं? ये तो शूद्रानी से जन्म हुए। व्यास जी किसे जन्म लिया? उनकी मैया क्या थी बतलाओ तो? अरे सुखदेव गोस्वामी का जन्म कैसे हुआ? ये इनका व्यास जी का जन्म हुआ मथुरा में, पराशर ऋषि जा रहे थे कहीं और अश्वरा की कन्या मच्छोदरी उसको देखा और साथ ही साथ उनको बेटा उत्पन्न हो गया। तो ये कौन से जाति के हैं? ये सबका विचार नहीं किया गया है। जन्म से सभी शूद्र हैं, जन्मा जायते शूद्र, सभी शूद्र जन्म से होते हैं, चाहे ब्राह्मण कुल में आए, क्षत्रिय कुल में आए, जिस कुल में आए, मुसलमान कुल में आए, कोई भी, सभी जाति से उस समय में शूद्र हैं, जन्मना जायते शूद्र। संस्कार द्विचोच्यते, और संस्कार गायत्री इत्यादि मंत्र लेकर के जब वो पुष्ट कुछ ज्ञान ब्रह्म ज्ञान आती इति ब्राह्मण, तो ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति होता है। उसका दूसरा संस्कार होने से गायत्री इत्यादि मंत्रों के द्वारा से तब वो द्विज होता है। विप्र किसको कहते हैं? वेद पाठी भवेत विप्र, वेद को पढ़ने वाला। तो यहाँ पर ढोल गंवार शूद्र पशु नारी इत्यादि में जो गंवार शूद्र लोगों के लिए जो शोक करते हैं, जो मांस मदिरा इत्यादि खाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, ये इन लोगों को शूद्र बताया गया। किंतु किसी कुल में भी उत्पन्न व्यक्ति जिसको तत्व ज्ञान है, ब्रह्म को जानने वाला है, आत्मा को जानने वाला है, गीता इत्यादि को रहस्य को जान करके चलने वाला है, वो शूद्र नहीं। भगवान का नाम करने वाला, आप वाल्मीकि को जानते हैं ना, उलटा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, ब्रह्म के समान। इसलिए हमारे शास्त्रों में ये सबका पक्षपात नहीं है, लोग नहीं समझने के कारण ऐसी गलती करते हैं। यदि सभी पशु मारने योग्य हैं तो गायों को और बछड़ों को मारने के लिए कहीं हमारे शास्त्र में लिखा है कहीं? तो सब पशु कहां इसमें आए? गंवार पशु, पशु भी कैसा गंवार, जैसे सिंह भालू इत्यादि आ रहे हैं मारने के लिए, झपटने के लिए, हमारे शास्त्र में उनके प्रति भी दया दिखलाने की बात आई है। किंतु इनसे भी दूर रहना पड़ेगा। एक कुत्ता आपके पीछे दौड़ा और अभी काटने वाला है, क्या करेंगे? लठिया घुमाएंगे कि नहीं? थोड़ा सा दूर 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 कहेंगे कि नहीं? ये सब गंवार है। किंतु जो कुत्ते स्वामी भक्त हैं, जो अपने स्वामी के लिए प्राण देने वाले हैं, उनको लिखा गया कि उनको भी मारो? बछड़ों को गाय को कोई मारता है? तो ये सब विचार होना चाहिए। तुलसीदास जी ने कभी दिखलाया ये ऐसे पशुओं को भी, गायों को भी हत्या करो और बछड़ों को मार करके खा जाओ? ये तो नहीं कहा। इसी तरह से सबका विचार होना चाहिए। तुलसीदास जी ने हमारे शास्त्रों में देखो कृष्ण स्वयं भगवान हो करके, रामचंद्र जी ने स्वयं भगवान हो करके अपनी मैयाओं को कितना आदर किया। लक्ष्मण जी को देखो, सीता जी पास में रहती हैं। रामचंद्र जी ने पूछा, जैसे ये कहां कहां के अलंकार हैं, सीता जी के अलंकार देखो तो सीता जी के हैं। उन्होंने कहा, मैं तो एक ही अलंकार पहचानता हूं। क्या? पैर। क्यों? मैंने उनके सिर के तरफ में, इधर ऊपर मैंने कभी देखा ही नहीं। ऐसा कहीं इतिहास में आपको मिलेगा, किसी शास्त्र में, विश्व के किसी भी इतिहास में या विश्व के किसी भी साहित्य में ये सब विचार मिलेंगे? तो कितनी सुंदर बात है। तो पक्षपात कहां किया? मूर्ख लोग नहीं समझने से ऐसा कहते हैं। अनुसुईया जी ने सीता जी को कहा, पति लंगड़ा दूल्हा इत्यादि हो तो भी उसका आदर करना चाहिए, इसमें बुराई क्या है। और स्त्रियों को भी ऐसा उपदेश दिया, और साथ में पुरुषों के लिए भी उपदेश दिया, जो और स्त्रियों को मैया, छोटी स्त्रियों को बराबर वाली को बहन, और अत्यंत छोटी हैं उनको बेटी के रूप में नहीं जानने से वो मनुष्य नरक में जाता है, ये भी तो दिया है शास्त्रों ने उचित चेतावनी। इसलिए कैसे शास्त्रों को ऐसा कर सकते हैं, जो शास्त्रों ने मनुष्यों ने शास्त्र बनाया, ये शास्त्र मनुष्यों का बनाया हुआ नहीं है, ये भगवान की मुखार की बिंद की वाणी है, अपौरुषीय है ना। इसलिए ये मत समझो। सीता जी ने क्यों कहा? अनुसुईया जी कैसी थी? उनके पति का नाम अत्रि, और इनको तीन भगवान के पुत्र हुए। एक कौन? शंकर जी बेटे के आए, ब्रह्मा जी आए, और विष्णु जी भी। ऐसी ये हैं, ये साधारण स्त्री नहीं है, जिसको राम और सीता जी भी उनको प्रणाम करने जा रही हैं, वो गंदी बात नहीं सिखलाएंगे। लौकिक जीवन में भी पति का आदर करना चाहिए। एक बार मन से जिससे शादी हो गई उसकी अर्धांगिनी बनती है, किंतु पति भी आधा अंग है, उसको भी स्त्री का परामर्श लेना, उसको भी आदर देना, ये उचित है। इसलिए सर्वत्र ही हमारे शास्त्रों में ऐसा ही कहा गया है। एक बात और, तुलसीदास ने बड़ी गड़बड़ी लिख दी, पूजिय विप्र ज्ञान गुणहीन। ये क्या तुलसीदास जी के सिर में एक पागलपन भरा है? वेद पाठ करने वाला उसका तत्व ज्ञान, मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान है, मैं ब्रह्म का अंश हूं, नित्य भगवान का दास, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इस ज्ञान को जानने वाला हो जो हम आत्मा हैं, भगवान के नित्य दास हैं, भगवान को भूल करके हमारी ये हो गई है, किंतु अभी कच्चा थोड़ा सा है, तब ये विप्र कहा जाएगा। तत्व ज्ञान नहीं है, बात ठीक है, नहीं है, तो अभी कुछ तो है। जैसे एक बात को समझिए, आपके पिताजी हैं, शराब पीते हैं, झूठ बोलते हैं, घर से मार करके निकाल देंगे, तो बेटा का यह कर्तव्य तो ऐसे पिताजी को मार करके निकाल दे, या उनके कुछ सुधारने की चेष्टा करेगा, फिर भी पिता ही है ना, कुछ पिता का गुण है। तो ऐसा जो विप्र है, यद्यपि तत्व ज्ञान में परिपक्व होकर के मुक्त नहीं हो गया और वैसे गुण नहीं है, तो अभी कुछ तो गुण है। और जो शूद्र हैं, जो भगवान को ही नहीं मानते, अंततः तो भगवान को मानने वाले तो हैं, माता पिता का तो आदर तो करने वाले हैं, तत्व ज्ञान भले ही जरा कम हो, इसलिए वहां पर कहा गया। इस चीज को अच्छी तरह से समझना चाहिए। इसलिए ये नहीं कहा, जैसे कि हमारे प्रहलाद जी थे, उसके पिता ने उस बहुत ही तंग किया, आप लोग तो जानते हैं इन्होंने क्या किया, पिता का उन्होंने विरोध किया, सहनशीलता से रहे। ऐसे ही आदर हमारा करना कर्तव्य है, सहिष्णुता होना चाहिए। शास्त्रीय जो गुण है, सरलता है, सहनशीलता है, ये नहीं होने से आप संसार भी नहीं चला सकेंगे, इसलिए ऐसे ये सब गुण के लिए कहा गया। सीता जी ने, राम ने सीता का त्याग क्यों किया? कुछ लोग कहते हैं ये भी गंदी बात है, एक आदमी जबरदस्ती किसी को, हमारी स्त्री को उठा ले जाए, बहन को उठा ले जाए, तो क्या हम उसका त्याग कर देंगे? राम को इतना भी ज्ञान नहीं था? बात कुछ दूसरी है, ये बात नहीं है, इसके लिए नहीं। तब एक बात है, जो स्त्री, जो पहले कहा ना, जो गंवार है, चरित्र भ्रष्ट है, जो पति को छोड़कर के शाम को रात को भी दूसरों के घर में रहती है, ऐसी स्त्री के लिए हमारे यहां कुछ नियम थे, उनको पति नहीं रखता था, जैसे कि समाज में ये कुरीति न पहुंच जाए। इसलिए समाज के लोगों ने विचार किया, जैसे यदि सीता जी रावण के घर में थी इतने दिनों तक, तो उनका चरित्र बच नहीं सकता, जैसे साधारण महिलाएं। किंतु बात तो ये थी नहीं, राम जानते हुए भी समाज की शिक्षा के लिए लौकिक रूप में उन्होंने सीता का त्याग किया, राजा ने अपनी रानी का प्रत्याग किया, रामचंद्र जी ने सीता का प्रत्याग यदि किया होता तो पहले ही वनवास से पहले ही अग्नि को सीता को समर्पण क्यों किया? जानते हैं रामलीला आरंभ होने के पहले खरदूषण के मारने के समय में ही सीता जी से कहा कुछ हमको लौकिक काज करना है, तो सीता जी को उसमें अग्नि में प्रवेश करा। अब जो लीलाएं हुए वो किसके साथ में? माया सीता के। साधारण लोग सामंजस्य नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये सब चीजें जानते नहीं है। दूसरी बात एक और है, प्रेम के दो पहलू होते हैं। क्या पहलू? एक विरह, एक मिलन, एक सिक्के के दो पहलू। जहां विरह नहीं है वहां मिलन में आनंद नहीं हो सकता। जैसे श्रीमद् भागवत को देखिए, रामायण को देखिए, सीता जी के मिलन में राम और सीता के हृदय में कैसा आनंद होता था, और विरह में उनका कितना तीव्र विरह दुख होता था, ये भी देखिए। हम जिसको जितना अधिक प्यार करते हैं उसके बिछड़न से उतना ही बड़ा दुख होता है, इस चीज को समझिए। घर से एक कुत्ता चला गया, उसके लिए थोड़ी सी शून्यता तो मालूम होगी, किंतु घर से हमारा बेटा इकलौता चला गया तो कैसा लगेगा? उसके लिए खाना पीना सब छूट जाएगा, इस चीज को समझिए। प्रति जहां अधिक है उसके लिए विरह भी तीव्र होता है। यदि तीव्र विरह के बाद में एक लड़का हमारा कहीं चला गया, गुम हो गया, 10 वर्षों के बाद में किसी प्रकार से मिला, अब उस बेटे को कैसे प्यार करेंगे? उसी रूप में सीता जी के साथ में राम का कैसा संबंध, ये स्वयंवर में चलिए जनकपुर में और देखिए। जब रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा, सीता जी को इतना आनंद हुआ कि कहने की बात नहीं, इसकी कोई सीमा नहीं। शास्त्र में तुलसीदास जी ने इसकी उपमा नहीं, वाल्मीकि रामायण में इसकी तुलना नहीं, आनंद से हृदय भर गया। जयमाला उठाई तो जयमाला उठी नहीं, और फिर क्या हुआ? सखियों ने उनके हाथ को सहायता देकर के ऊंचे उठा करके श्री रामचंद्र जी के गले में वो पहन गई। अच्छा, इस आनंद को देखिए। और यही सीता जी जब रावण हर करके ले गया तो रामचंद्र जी क्या देख रहे हैं? त्रिलोक शून्य देख रहे हैं। यहां पर बैठे रिमझिम वर्षा हो रही, आंख बंद है, सोच रहे हैं कि विवाह का एक दृश्य, और वो सब पुरानी बातें याद आ रही है। सीता जी ने कैसे हमारे लिए वनवास भी आई, कितनी हमारी सेवा की, वो सब चीजें याद आती हैं विरह में, और तब धीरे धीरे आंखों में आंसू भर आते हैं और आंखों से आंसू बहने लगता है, पुरानी सारी स्मृतियां जग उठती हैं, और फिर विलाप करने लगते हैं, वृक्षों से पूछते मेरी सीता प्यारी कहां गई। मनुष्य, साधारण मनुष्य के जीवन में ये सब संभव नहीं है। अंत में उन्होंने एक धोबी के कहने से छोड़ दिया। अरे वो सब ऊपर की बातें हैं, यदि छोड़ दिया तो राम चटाई राजभवन में बिछाकर सीता का चिंतन कर रहे हैं। सीता जैसे खाती हैं वैसे ये खाते हैं। सीता को सांत्वना देने के लिए उनके दो पुत्र हैं लवकुश और वाल्मीकि ऋषि, उनके पिता के रूप में वहां हैं। राम को सांत्वना देने के लिए यहां कौन है? है कोई? कोई नहीं है, तड़फ रहे हैं। और अंत में वाल्मीकि जी ने या तुलसीदास जी ने सीता जी के साथ में राम का मिलन कराया, दिखलाया जैसे दोनों साथी भी चले गए अयोध्या साकेत में। सीता जी पहले पहुंच करके उनके लिए प्रतीक्षा कर रही हैं। तो ये सब चीजों को समझाने वाले जगत में बहुत विरल है। ये प्रेम की बातें थी, एक विरह और एक मिलन। कृष्ण लीला में भी ऐसे ही देखिए, ब्रज में रहे, रासलीला तक गोपियों के साथ में रहे, नंद बाबा यशोदा जी के साथ में रहे, और फिर अंत में उनका विरह हुआ, मथुरा चले गए, मथुरा से द्वारका। तड़फ रहे हैं, कृष्ण भी तड़प रहे हैं, ये भी तड़प रहे हैं। गोपियां तो हजारों हैं, परस्पर बातचीत कर करके संतना पा जाती हैं, और कृष्ण कोई संतना देने के लिए नहीं है, द्वारका या मथुरा में अकेले बैठे रो रो रहे हैं। अंत में एक साथी बनाने के लिए उद्धव जी को ब्रज में भेजा। किस लिए? मैंने जहां प्रेम की पाठ पूरी की है, प्रेम का पाठ पढ़ा, उन गोपियों के स्कूल कॉलेज में जाओ। प्रेम किसे कहते हैं इसको समझो। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ा सो पंडित हो, बाकी सब मूर्ख। प्रेम होना चाहिए। प्रेम यदि हमारे गृहस्थ जीवन में नहीं है और धन धान्य से पूर्ण है, तो स्त्री आपकी आपको छोड़ करके जहां प्रेम मिलेगा वहां चली जाएगी। पति भी सुंदर होने से नहीं चलेगा, ऐसा प्रेम चाहिए जो पति को वशीभूत कर सके, सेवा कर सके, अन्यथा तो वो पति फिर दूसरा कोई ढूंढ लेगा, वहां नहीं मन मानेगा, तीसरी जगह चौथी जगह जाएगा, जहां प्रेम मिलेगा वहां जाएगा, ये तो सीधी सी बात है। तो ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ा सुपंडित हो, उद्धव जी को भेजा जी जाओ स्कूल में पढ़ो। स्कूल में गए एडमिशन लेने के लिए, किंतु एडमिशन ही नहीं हुआ, लौट करके मथुरा आना पड़ा कुछ दिनों के बाद में। वो उनमें छात्र में वो गुण की योग्यता वो नहीं थी, वृंदावन में नहीं रह सके। कृष्ण से आकर के बोले जी भैया आपने अन्याय किया है, जो मथुरा चले आए, गोपियों का इतना प्रेम आपके ऊपर में जो आपके लिए पागल हो रही हैं, और आप यहां पर हैं, कृष्ण का प्रेम वो भी नहीं समझ सके। इसलिए भागवत का या गीता का सब कुछ निर्भर है प्रेम के ऊपर में। जिसने प्रेम का पाठ पढ़ा, एकदम घर से ही स्त्री को प्यार करना सीखो, बेटे बेटी को, संसार के सब लोगों से, जीवन तुम्हारा सुखी रहेगा। यदि प्रेम ही नहीं है किसी से, तुम्हारा जीवन सुखी नहीं हो सकता। प्रेम दो प्रकार का, एक लौकिक प्रेम और एक पारलौकिक। पारलौकिक प्रेम में भी बहुत प्रकार के हैं, किंतु ये समझ रखो प्रेम में लेना नहीं है, केवल देना है। जिस प्रेम में केवल लेना ही लेना है वो प्रेम नहीं, वो तो क्या है, काम है, और वो मरना है। इसलिए प्रेम लेना नहीं जानता है। गोपियों का प्रेम लेना नहीं, कृष्ण से कुछ नहीं लिया, अपना सर्वस्व दे दिया। अपने पति का प्रेम, अपने पुत्र का प्रेम, संसार का प्रेम, जो कुछ था सबको सेंट्रलाइज करके एक में एक मुखी करके कृष्ण में लगा दिया। इसलिए कृष्ण कहने के लिए बाध्य हुए कि मैं तुम्हारा ऋणी हूं, जन्म जन्मांतर के लिए ऋणी हूं। किसके लिए? स्त्रियों के लिए कहा। कैसी स्त्रियों को? जो अपने पति को भी हम कृष्ण के लिए छोड़ दिया, उनके लिए कह रहे हैं। स्त्रियों के लिए कितना सम्मान है देखो। हम लोग पुरुष रूप में है, लेकिन हम लोग अपने महाप्रभु जी के आदर्श के रूप में स्त्री गोपी बन करके कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए साधारण चीज नहीं है। आप लोग विचार करके देखेंगे, आप में यहां का तो ज्ञान कुछ होगा, किंतु हृदय कम है। हृदय महिलाओं में होता है प्रेम का। यदि प्रेम नहीं है तो वो जीवन सूना है। सारे शास्त्र इसी की कहते हैं, इसी की शिक्षा देने के लिए। आज बहुत अधिक समय हो गया, थोड़ा शंका में रहा, और भी जो कुछ बाकी शंकाएं हैं मैं कल इसको कह करके फिर भागवत हम पूरे रूप से हम चलेंगे। रामायण का भी इसमें उपाख्यान लाएंगे, क्योंकि भागवत में रामायण का भी उल्लेख है, समस्त अवतारों का उल्लेख है। सभी भगवान माने अनेक नहीं है, एक ही है। ऐसा कुछ लोग प्रश्न करते हैं, क्रिश्चियनिटी में एक गॉड है, मुस्लिमों में केवल एक खुदा है, बौद्ध में केवल एक बौद्ध देव, किंतु हमारे सनातन धर्म में लाखों देवता देवियां हैं, किसकी पूजा करें? किंतु यह गलत बात है, वो लोग नहीं जानते, और हम लोग भी इसका सद उत्तर नहीं जानते। यदि कोई विज्ञ व्यक्ति हो, इन शास्त्रों में प्रवीण हो, हमारी सारी शंकाओं को दूर करके कहा जाए, एक नहीं, एकम एव अद्वितीयम, एक में ही बहुत है। एक एक माने क्या, दो अक्षर हो गया ना, तो एक में भी तो दो अक्षर है। और यदि कहो जो थ्री ओ एन ई तो कितने हो गए, तो एक कहां रहा। कहो जो ऐसा ऐसा लाइन एक खींच दिया, अरे एक लाइन में हजारों डॉट्स हैं, तब तो ये एक रेखा हुई। एक रहा कहां, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन यूनिटी। हम एक कहां है, दो आंख है, नाक है, मुख है, कान है, गला है, दो हाथ है, पैर है, पेट है, और इसके अंदर में कितने क्या क्या हैं, तो ये कहां रहा, इसमें एक है कहां। यथार्थ में एक नाम का कोई चीज नहीं है, तभी कहा गया भगवान एक है, भगवान जो समस्त विश्व ब्रह्मांड का भरण पोषण करने वाले, संपूर्ण का माने क्या। अभी हमारे राष्ट्रपति भारत के गए थे चीन में, सुना होगा, अकेले गए थे, कहा तो गया जी भारतवर्ष के राष्ट्रपति चीन में गए, अकेले गए थे कि और उनके साथ में थे, कितने मंत्री, कितने क्या क्या परिकर, इधर में बड़ी गार्ड और क्या क्या उनके साथ में। अमेरिका एक है राष्ट्र, इसमें पॉपुलेशन कितना है, इन पॉपुलेशन को बात देकर के, यहाँ पर पहाड़, पर्वत, नदी, नाले और लाखों वनचर, जलचर, थलचर, मनुष्य हैं, एक कहाँ है। तो भगवान में सब कुछ है, तब लेकर के भगवान, जैसे राष्ट्रपति राष्ट्र को लेकर के, उसके अंदर में सब कुछ आ जाएगा। उसी प्रकार से भगवान के अंदर में सारा विश्व, सारे प्राणी, सब जितना जो कुछ है सब मिलकर के भगवान। गाड़ीवान माने क्या होता है, गाड़ीवान, गाड़ी वाला, एक का मान। तो भगवान बहुत से जिसका भरण पोषण करके सारे विश्व के प्राणी को अपने अंदर में रखता है, और सबके अंदर में वो है, इसलिए भगवान। इस चीज को समझना चाहिए। इसलिए राम कृष्ण ये सब अलग अलग नहीं है, देवता इत्यादि कुछ अलग नहीं है, देवता अलग उनकी विभूतियां हैं, और भगवान ही अनेक रूपों में जगत का कल्याण करने के लिए विविध रूपों में है। तभी सभी कृष्ण ही मूल है। इस चीज को पीछे हम समझाएं, इतना समझने की चेष्टा करें। कोई प्रश्न भी आपका होगा दूसरे दिन आप लोग पूछेंगे, अच्छी तरह से जितना जानता हूं उसको समाधान करने की चेष्टा करूंगा। और अंत में कहूंगा, एते चांस कलापुंस, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण स्वयं भगवान है, उन्हीं के अंदर में राम, नृसिंह, कल्कि, बाणमन साहब उनके अंदर में है, देवता जितने भी हैं साहब उन्हीं के अंदर में विभूति के रूप में है, गीता में पढ़ेंगे। हम लोग भी उसी के अंदर में है। ये भगवान की एक लोम कुप के समान असंख्य ब्रह्मांड है, छोटे छोटे तारे सूर्य से भी बड़े बड़े लोक हैं, ऐसा समझो, जिनकी अभी तक लाइट यहां तक नहीं पहुंची इतने वर्षों में, अथाह अनंत है। कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण।